एट द मोमेंट पाकिस्तान के लिए सीरीज जीतना टारगेट है। हम लोग एग्जिस्टेंट टेस्ट हारे, उसके बाद टेस्ट मैच जीता है, पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है।
ये मेरी कमबैक इनिंग थी। यूसेन बोल्ट
इज द चैंपियन अगेन। हॉकी में नौकरियां मिलना बंद हो गई हैं।
तो रेसलिंग में जब लड़के हैं तो क्या लड़कियां नहीं कर सकती?
बीसीसीआई को खुद पहले से ही करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर नहीं।
क्या जुडिशियल लॉ वायलेट कर सकती है?
टेस्ट सीरीज तो बराबर, लेकिन अब वनडे में क्या होगा? रियो ओलंपिक्स में अमरीका की बढ़तरी है, कोई जो यूसेन बोल्ट को रोक सके? हॉकी में हैरान कुन तौर पर अर्जेंटाइन फातेह और लोढ़ा कमीशन सिफारिशात, भारतीय क्रिकेट बोर्ड उनसे कितना बच पाएगा?
खेल के मैदान से सबा नाज का सलाम। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड का एक मरहला तो खैर से मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान ने हारी हुई टेस्ट सीरीज को बराबरी पर खत्म किया और अब इसका अगला इम्तिहान इंग्लैंड के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज की शक्ल में सामने है। ये सीरीज इस लिहाज से भी सख्त और मुश्किल है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो पाकिस्तान आलमी नंबर 2 बन चुका है, लेकिन वनडे में इसकी रैंकिंग न तो दूसरी, न चौथी और न पांचवी है, बल्कि वो इस वक्त 9वें नंबर पर है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज आगाज 24 अगस्त से होना है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की टीम आयरलैंड के खिलाफ 2 वनडे इंटरनेशनल मैचों में मध्य मुकाबिल है। जी हाँ, ये वही आयरलैंड है जिसने 2007 के आलमी कप में पाकिस्तान को हराकर दुनिया को हैरान कर दिया था। लेकिन गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने आयरलैंड को ऐसा कोई मौका नहीं दिया और अपने तारीख साज 255 रन की बदौलत आयरलैंड को शिकस्त दी, जो वनडे की तारीख में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है। इस मैच में पाकिस्तानी ओपनर शर्जील खान ने शानदार बैटिंग करते हुए 152 रन स्कोर किए।
ये मेरी कमबैक इनिंग थी और मेरा फोकस सारा यही था कि इस मैच में मैं कमबैक कर रहा हूँ और एक अच्छा चांस मुझे मिला था इस मैच में और मेरी कोशिश यही थी कि मैं इसमें अच्छे से अच्छा अपने आप को प्रूव करूँ।
किसी भी टीम के लिए इंग्लैंड को इंग्लैंड ही की सरजमीन पर हराना बहुत बड़ी बात समझी जाती है, लेकिन पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में एक नहीं बल्कि 2 टेस्ट मैचेस जीते। टेस्ट सीरीज के इख्तिताम पर हमारे साथी अब्दुल रशीद शकूर ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाहुल हक से बात की और उनसे पहला सवाल ये था कि ओवल टेस्ट की जीत और टेस्ट सीरीज का बराबर करना आपके लिए क्या मानी रखता है?
बड़ी प्लेजिंग है, 2-1 डाउन हो आप सीरीज में और जिस तरीके से 2 टेस्ट मैच हम लोग हारे, मोरल काफी डाउन था टीम का, बट ओवरऑल टीम का कैरेक्टर जबरदस्त रहा। हर लड़के ने कैरेक्टर शो किया और जिस किस्म की फाइटिंग स्पिरिट शो की कि जिस सिचुएशन से हम लोग एग्जिस्टन टेस्ट आ रहे, उसके बाद कम बैक किया, सबने टेस्ट मैच जीता, बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल में और पूरी टीम है मुबारकबाद की मुस्तहिक है इस चीज के लिए।
दूसरा सवाल था, टेस्ट मैचों की शिकस्त के बाद आप खुद पर कितना दबाव महसूस कर रहे थे?
प्रेशर नहीं था इस चीज का, बट एक चीज का थोड़ा एहसास हमें जरूर था कि लास्ट टेस्ट मैच हमें जीतना चाहिए था, जो कि हम इवन ड्रॉ भी नहीं किया हमने और हम लोग हार गए, तो उसके बाद मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा डिटरमिनेंट थे कि इस टेस्ट मैच में हमने मेकअप करना और कोशिश करनी, टेस्ट मैच हर हाल में जीतें और सीरीज को बराबर करें।
मिसबाह से पूछा गया कि हर क्रिकेटर की यह ख्वाहिश होती है कि उसका नाम विजडन के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल हो। आपने इस सीरीज में शानदार बैटिंग की है, क्या आपको लगता है कि आपका नाम 5 बेहतरीन खिलाड़ियों में आ जाएगा?
इट्स एन ऑनर अगर आ जाता है, बट ऑब्वियसली फॉर मी एट द मोमेंट पाकिस्तान के लिए सीरीज जीतना या अच्छा करना टारगेट है। बाकी सारी चीजें तो वक्त के साथ ऑनर्स आपके उसमें आते हैं, तो दैट्स ऑब्वियसली समथिंग गुड फॉर यू।
मिसबाह से आखिरी सवाल था कि आपने इस सीरीज में समी असलम और सुहेल खान को मौका दिया, ये दोनों खिलाड़ी आने वाली सीरीज में कितने कारामद साबित होंगे?
दोनों जो चेंजेस की, जितनी भी चेंजेस की, सुहेल खान को लेके आया, उसने 2 मैच में 5 विकेट हॉल किए, इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। ओवरऑल सारी जो चेंजेस हमारी रही वो काफी अच्छी रही और इन फ्यूचर जो मुश्किल सीरीज है हमारी आ रही है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, जो हमने ये चेंजेस किए इसको हम आगे लेके चले और टिल द न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलियन सीरीज एक हमारा सेट प्रॉपर हो जाए। वी आर लुकिंग फॉर अ 5th बॉलर इन कमिंग फ्यूचर, जो कि हमारे लिए अगली सीजन में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इन टर्म्स ऑफ मीडियम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, साथ बैट्समैन हो या इन टर्म्स ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर हो।
ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में सजने वाला ओलंपिक्स का मेला आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम के जाने पड़ रहा है। तमगों की दौड़ में अमरीका 100 तमगों के साथ पहले और बरतानिया दूसरे नंबर पर आ गया है, लेकिन तमगों की इस दौड़ से कतई नजर दुनिया भर की तवज्जो 100 और 200 मीटर की दौड़ पर लगी रही। जमैका के आलमी शोहरत याफ्ता एथलीट यूसेन बोल्ट ने 100 मीटर की दौड़ जीतकर नई तारीख रकम की, लेकिन यूसेन बोल्ट ने इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि 200 मीटर में भी अपने हरीफों को पीछे छोड़ दिया। रियो ओलंपिक्स मुकाबलों में इंडिया की साक्षी मलिक ने कुश्ती के मुकाबले में कांसी का तमगा जीत लिया है। रियो मुकाबलों में ये इंडिया का पहला तमगा है, जबकि साक्षी ओलंपिक्स में इंडिया के लिए कुश्ती में तमगा हासिल करने वाली पहली और मजमुई तौर पर चौथी खातून है। बीबीसी हिंदी सर्विस के नामा निगार वाटसालिया रॉय ने इस मौके पर साक्षी मलिक के वालदैन से गुफ्तगू की है।
वो खुशी तो मैं जी जाहिर नहीं कर सकता, इतनी बड़ी खुशी, लोग गली के बाहर भीतर आ गए जी। इस लड़की ने मेहनत इतनी कराकी थी, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को जी, बहुत ज्यादा मेहनत कराकी थी। और जब उसने क्वालिफाई किया ना, जब उसने मेरे को बोल दिया था पता 100% मेडल लेके आऊंगी, अब की बार उसका इतना कॉन्फिडेंट था उसमें देखा नहीं जा रहा था।
रोहतक से लेकर रियो तक का जो सफर है साक्षी का, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे।
वो 3 महीने की थी जब ही वो अपने दादा दादी के पास छोड़ दी थी, 5-7 साल वहीं रही उनके पास। मेरे पिताजी को पहलवान साहब राम राम, तो उसको उस टाइम पे पहलवान की भनक लगी है कि मैं भी पहलवान बनूंगी। कामयाबी का सिलसिले जी मेरे से ज्यादा उसकी मम्मी ने ज्यादा सपोर्ट किया जी उसको।
क्या कहेंगे आप इस कामयाबी भरे लम्हे के मौके पर, और कैसे साक्षी का सफर जो अभी तक रहा?
बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस की है, सुबह 4 बजे उठना, 9 बजे वापिस आना, दिन में अपना खाना, सो के फिर हमको फिर प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस में थोड़ी बहुत कोई कमी रह जाती है तो उसने स्विमिंग भी की है, बीच में जिम की गई है। उसने अपना एक शेड्यूल बना रखा था कि इतनी मैंने आज इतना करके दिखाना है।
साक्षी हरियाणा से हैं। हरियाणा में अगर हम बात करते हैं महिलाओं के पुरुषों के मुकाबले जनसंख्या की, तो वो सबसे कम जिन राज्यों में है उनमें हरियाणा का नाम आता है। ऐसे राज्य से निकलकर जब बेटी ओलंपिक तक पहुंचती है, तो एक लड़की होने के नाते क्या समाज में जिस तरह की अड़चनें आती हैं, क्या साक्षी को भी उनका सामना करना पड़ा?
हाँ, शुरू में जब रेसलिंग स्टार्ट की थी तो लोगों ने कहा था कि ये लड़कों का गेम है, लड़कों का गेम नहीं है। तो फिर मैंने उनको जवाब भी दिया कि भाई पहले हमारे जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या पायलट हैं, उसमें क्या सब लड़के लड़के हैं, लड़कियां भी तो हैं, तो रेसलिंग में जब लड़के हैं तो क्या लड़कियां नहीं कर सकती।
रियो ओलंपिक्स के हॉकी मुकाबलों में इस बार उस वक्त चौंका देने वाला नतीजा सामने आया जब अर्जेंटाइन ने पिछले 2 ओलंपिक्स की फातेह टीम जर्मनी को सेमीफाइनल में शिकस्त दे दी। इंडिया के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं रही, उसे क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम ने शिकस्त दी। गोल्ड मेडल के लिए होने वाला फैसला कुन मुकाबला अर्जेंटीना ने जीता। फाइनल में उसने बेल्जियम को 2 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दी और पहली मर्तबा हॉकी में सोने का तमगा जीता। ये तमाम टीमें कम से कम इस लिहाज से तो खुशकिस्मत रहीं कि उन्हें ओलंपिक्स में खेलने का मौका मिल गया, लेकिन हाय रे किस्मत कि पाकिस्तान इन मुकाबलों से बाहर रहा। मैंने पाकिस्तान के साबिक ओलंपियन शहबाज अहमद से बात की, जिनकी क्यादत में पाकिस्तान ने 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में कांसी का तमगा जीता था, जो ओलंपिक्स में पाकिस्तान का आखिरी तमगा भी है। शहबाज अहमद इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी भी हैं। उनसे मेरा पहला सवाल ये था, क्या ये समझ लिया जाए कि पाकिस्तान में हॉकी अब बिल्कुल खत्म हो गई है?
इसमें बहुत सारे अमल हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग हैं, बहुत सी फैमिली हैं जिनके बच्चे हॉकी नहीं खेल रहे, हॉकी पॉपुलर नहीं रही, हॉकी में नौकरियां मिलना बंद हो गई, हुकूमत की तरफ से प्रॉपर सपोर्ट नहीं थी। और अगर हम अब फेडरेशनों को जिम्मेदार कहेंगे तो वो भी किसी हद तक हैं, क्योंकि प्लानिंगें उस तरह उस लेवल पे नहीं की गई। हमने अभी टेक ओवर किया, 1 साल हो गया, हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की भी सपोर्ट है, तो इंशाल्लाह ताला ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस कराएंगे कि हॉकी में अट्रैक्शन वापस आए, बच्चों को इंसेंटिव नजर आए, और सबसे ज्यादा जो जरूरी है उनको ये पता लेके डी मेरिट जो प्लेयर हैं हम उनको प्रमोट नहीं करेंगे। इससे बड़ी एनकरेजमेंट आएगी और हॉकी में जब पूल ऑफ प्लेयर बढ़ेगा तो हमें क्वालिटी ढूंढने में मदद मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा, जैसा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूं, कि आइंदा पाकिस्तान की हॉकी टीम वो मेडल जीते ताकि मुझे खुशी महसूस हो।
पिछले दिनों भारतीय क्रिकेट बोर्ड सुप्रीम कोर्ट की वजह से काफी परेशान रहा, क्योंकि जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने उस पर कई पाबंदियां लगाने की कोशिश की, लेकिन अब बीसीसीआई ने कुछ सुकून का सांस लिया, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जज मार्कंडे काटजू के सुपुर्द होंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ही घुमा के रख दिया। इस दिलचस्प मोड़ पर पहुंचे इस केस पर दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
इन दिनों बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट और उसके एक साबिक जज मार्कंडे काटजू की वजह से सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बीसीसीआई में इस्लाहात के बारे में जस्टिस लोढ़ा कमेटी की ज्यादातर सिफारिशों को मानने से बीसीसीआई में बदलाव आएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बीसीसीआई लोढ़ा पैनल की सिफारिशें 6 महीने में लागू करे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पिछले दिनों इस मामले में नया मोड़ तब आया जब साबिक जज मार्कंडे काटजू को बीसीसीआई ने अपने साथ जोड़ा और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल दाग दिए।
ये नया मोड़ बहुत जरूरी था, क्योंकि ये बड़े सीरियस क्वेश्चन है।
कि क्या जुडिशरी लॉ बना सकती है, क्या जुडिशरी लॉ वायलेट कर सकती है, क्या जुडिशरी दूसरे स्टेट्यूटरी अथॉरिटी के फंक्शंस को टेक ओवर कर सकती है, ये सब चीजें तो शुरू से ही आनी चाहिए थी। अब अनफॉर्चुनेटली ये रेज नहीं हुई, मगर रेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है कि जुडिशरी जो मनचाहे बाएं दाएं किए जाए। भाई जजेस हैव टू एक्ट ऑन लीगल प्रिंसिपल्स, तो ये सब लार्ज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी कंसिडर।
दूसरी जानिब जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज मेमन मानते हैं कि
पहले से ही करना चाहिए था अपने आप, सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर नहीं। जैसे एज लिमिट पहले से ही खुद के लिए 75 का एज लिमिट लगा देते थे तो एक आर्ग्यूमेंट बन सकता था, लेकिन अब जो है लोधा पैनल ने 70 का लगाया है, अब उससे आर्ग्यूमेंट करना 70 हो या 75 हो वो बिल्कुल एकेडमिक आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, जैसा एक विमेन्स क्रिकेट अब बीसीसीआई में है तो विमेन क्रिकेटर नॉमिनेटेड होना चाहिए बीसीसीआई में, तो ऐसी कुछ चीजें खुद ब खुद अगर हो जाती तो इतना बड़ा झटका लोधा पैनल का नहीं लगता।
लगता है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज के दरमियान उलझ गया है और बीसीसीआई को थोड़े वक्त के लिए इस दौरान सांस लेने का मौका मिल गया है।
और इसी के साथ अब सबा नाज को इजाजत दीजिए।